आप सुन रहे हैं हेल्थ शॉर्ट्स पॉडकास्ट ब्रॉट टू यू बाय एचटी स्मार्टकास्ट।
हेल्थ शॉर्ट्स पॉडकास्ट हेल्दी जिंदगी सीजन 2 के नए एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपकी होस्ट योगिता यादव, एडिटर हेल्थ शॉर्ट्स हिंदी। दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था कि हम हर बार आपके लिए वो सारी जानकारियां लेकर आएंगे जो आपके लिए हेल्दी जिंदगी की राह और आसान बना सकें। इसी वादे के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। दोस्तों, जब भी सेहत के बारे में बात होती है तो हम हेल्दी लाइफस्टाइल की सिफारिश करते हैं, जिसमें उन खराब आदतों और चीजों को छोड़ने के लिए कहा जाता है जो किसी भी बीमारी का कारण बन सकती हैं। पर क्या आप जानते हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिन्हें रोक पाना हमारे हाथ में ही नहीं होता, यानी जो हमारी इम्यूनिटी के कारण ही हम पर वापस हमला कर देती हैं। इन्हें हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। आज इस बेहद गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर किरण सेठ। डॉक्टर किरण, स्वागत है आपका हेल्दी जिंदगी पॉडकास्ट में।
थैंक यू योगिता, आपने एक मौका दिया है मुझे आज इस मंच को इस्तेमाल करके लोगों को बताने का कि ऑटो इम्यून बीमारियां क्या हैं, कौन से डॉक्टर हैं जो इसको ट्रीट करते हैं और कैसे इन बीमारियों से हम बच सके, शायद इस मंच से हम आज बात करेंगे।
जी बिल्कुल। डॉक्टर किरण मेट्रो हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट नोएडा में कंसल्टेंट रिमोटोलॉजी हैं और पिछले 2 दशक से मेडिकल फील्ड में अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो डॉक्टर सेठ, सबसे पहले हमारे लिसनर्स को आसान भाषा में समझाइए कि आखिर ऑटो इम्यून डिजीज होती क्या है।
योगिता, जैसे कि शब्द ऑटो इम्यून आपको ये बता रहा है कि ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिकली आपके इम्यून सिस्टम में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो कि आपके शरीर में कुछ तरह की बीमारियां बना रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे को एक रक्षक की तरह गार्ड करता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं, जो कि कुछ एंटीबॉडीज बनाते हैं किसी भी बाहरी चीज़ जो कि एंटीजन की तरह काम करती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो कोई टॉक्सिन हो, उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एक प्रहारी की तरह आकर उन सब चीज़ों को से डील करने के लिए कुछ ऑटो एंटीबॉडीज बनाता है जिससे कि इन चीज़ों से हमें बचाव मिल सके। लेकिन किन्हीं कारणों के वजह से ये इम्यून सिस्टम हमारा जो काम उसको करना होता है वो कर नहीं पाता और जो बाहरी एंटीजन्स होते हैं वो पूरी तरह से इसको विध्वंस कर देते हैं, जिससे कि हमारा शरीर ओपन हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों के लिए। तो आसान भाषा में यही है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीजन्स के लिए वो जो ऑटो एंटीबॉडीज बनाता था वो ना बना के उन एंटीजन्स की वजह से शरीर के दूसरे हिस्सों को या ऑर्गन सिस्टम्स को या ब्लड सेल्स को उनको डिफेक्टिवली इफेक्ट करता है।
मतलब हम इन्हें इम्यूनिटी सेल्स का सिविल वॉर समझ सकते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर अचानक से शुरू हो जाता है और वो अच्छे और बुरे सभी चीज़ों को अटैक करना शुरू कर देता है।
बिल्कुल बिल्कुल सही
है ना? भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज हैं जो अपना प्रभाव रखती हैं, जो बीमार कर रही हैं?
आई एम अ रूमेटोलॉजिस्ट, तो अगर मैं अपने उसकी बात करूँ, अपने क्षेत्र की बात करूँ, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज वन वेरी कॉमन डिजीज। उसके बाद सिस्टमिक लूपस इरिथमेटोसिस, देन आपका सोरियासिस हो गया, अभी हाल में ही हम लोगों ने काफ़ी डर्मेटोमायोसाइटिस और मायोसाइटिस जिसमें मसल वीकनेस आती है वो बीमारी के बारे में सुना। देन Type 1 डायबिटीज इज ऑल्सो वेरी कॉमन, जो कि डायबिटोलॉजिस्ट एंडोक्राइन डिसऑर्डर में एडिसन्स डिजीज जिसमें आपका एड्रिनल ग्लैंड इफेक्ट होता है। देन कुछ बीमारियां जो सबसे टॉक्सिक होती हैं, एक कार्डियोमायोपैथी होती है जो कि जॉइंट सेल कार्डियोमायोपैथी होती है जो कि कार्डियोलॉजिस्ट देखते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन एंड वेरी फेटल। एंड देन सम काइंड ऑफ डिजीजेज लाइक इनकेफेलाइटिस एटसेट्रा, कैन बी सीन बाय द न्यूरोलॉजिस्ट. सो ये जो ऑटोइम्यून बीमारियां हैं, क्योंकि कौन सा ऑर्गन सिस्टम आपका अफेक्ट कर रही है उसी हिसाब से ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में पहुंचती हैं. लेकिन अगर एक रूमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखा जाए, ये जो एक डिपार्टमेंट होता है इसमें इम्यून डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं. और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की अगर मैं बात करूँ, जिसमें जोड़ खराब होते हैं, जिसमें जोड़ों में सूजन आती है, अकड़न आती है, यूजली ये यंग गर्ल्स फीमेल्स की बीमारी होती है, जिसमें ऑलमोस्ट 9 फीमेल्स और 1 मेल, लेकिन अगर मेल में होती है तो बहुत सिवियर होती है. और इसमें आपके हाथ के और पैर के छोटे जोड़ जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उसमें सूजन आती है. सुबह उठ के 15-30 मिनट तक की अकड़न होती है, जो कि जैसे जैसे सूरज निकलता है उसके साथ धीरे धीरे कम होती है, या दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है. और इसमें योगिता यही नहीं सोचना कि सिर्फ ये जोड़ों को इन्वॉल्व कर रही है, प्रॉब्लम यहाँ आती है जब ये बीमारी जोड़ों को छोड़ के आपके दूसरे ऑर्गन सिस्टम्स पे भी इन्वॉल्व करती है. जैसे लंग में जब ये चली जाती है तो नोड्यूल्स बनाती है और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बनाती है, जिससे कि पेशेंट को सांस लेने की भी तकलीफ होती है. आँखों को इन्वॉल्व कर सकती है, यूवियाइटिस, आयराइटिस, स्क्लेराइटिस, ऐसी आँखों में प्रॉब्लम बनाती है. जन ब्रेन की किसी भी नाड़ी को भी इन्वॉल्व करके वैस्कुलाइटिस बनाती है, जिससे कि अधरंग भी हो सकता है. पैरों में नसों को इन्वॉल्व कर सकती है और उसकी मतलब वीकनेस लेके आ सकती है, वैस्कुलाइटिक अल्सर बना सकती है. तो ये बीमारी जो कि जोड़ों में लोगों को इतना ही पता है कि जोड़ों को इन्वॉल्व करती है और जोड़ों में डिफॉर्मिटीज बनाती हैं. बहुत कॉमन से हाथ पैर दिखाते हैं जिसमें उंगलियां टेढ़ी हो रही हैं, घुटने और डिफॉर्मिटी हो रही है, स्वैन नेक डिफॉर्मिटी हो रही है. बट मेन प्रॉब्लम जो हम रूमेटोलॉजिस्ट, इतना वी सेलिब्रेट वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, और रूमेटोलॉजिस्ट हमारी इंडियन रूमेटोलॉजी एसोसिएशन बहुत मेहनत कर रही है ताकि लोगों को, जनरल मासेस को ये बता सके कि ये ऑटोइम्यून बीमारी सिर्फ जोड़ों तक ही सीमित नहीं है, ये दूसरे आपके ऑर्गन सिस्टम को भी इन्वॉल्व करती है. सेकेंड जो बीमारी,
एक मिनट डॉक्टर किरण, अभी आपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बताया. आर्थराइटिस कई तरह का होता है, कोई पेशेंट ये कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि उसे कौन से वाला आर्थराइटिस है? इसके अलग सिम्टम्स होते हैं क्या?
देखिए, जो कॉमनेस्ट होता है दैट इज द ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे कि लोग कहते हैं कि सिनाइल एज से हो गया और बड़ी उम्र की औरतों को हो रहा है, या मेनोपॉज के बाद औरतों को घुटनों में, या मेल्स को भी घुटनों में या कमर में या गर्दन में सर्वाइकल की प्रॉब्लम है. दैट इज़ द कॉमनेस्ट वेराइटी. बट उसमें भी आजकल बहुत चीज़ें हो रही हैं जिसमें कि आपकी कार्टिलेज रेस्टोरेशन और प्रोटेक्शन और अर्ली चेंजेस में रूमेटोलॉजिस्ट बहुत अलग तरह का ट्रीटमेंट देके पेशेंट का वेट एंड खान पान और बाकी कार्टिलेज प्रोटेक्शन की थेरेपीज आती हैं, उसको देने के बाद जोड़ों को बचाया जा सकता है. दैट इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ द आर्थराइटिस. देन सेकेंड कॉमनेस्ट जो होती है दैट इज जिसको हम गठिया बोलते हैं लेमेन टर्म में, जो कि गाउट होता है, जो कि यूरिक एसिड के बढ़ने से होती है. एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज या तो यूरिक एसिड आपके शरीर में ज़्यादा बन रहा हो, जैसे कैंसर के पेशेंट्स में जब हम दवाइयाँ देते हैं तो बहुत सारे सेल्स टूटते हैं, सेल्स टूटने के कारण भी यूरिक एसिड बढ़ता है. थायराइड के पेशेंट को भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है. एंड कुछ हमारे खान पान जो कि हम डेली जैसे नॉनवेज ज़्यादा खा रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं, इस तरह के जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उससे भी यूरिक एसिड बनता है. तो ये गाउट की बीमारी होती है जिसमें लाइफस्टाइल और इन सब चीज़ों पे हम बहुत तवज्जो देते हैं. लेकिन जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है वो अलग होती है, क्योंकि इसके अंदर एक तरह का इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है. इन्फ्लेमेशन मतलब ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं वो जब सुबह उठते हैं तो उनको जो ये अकड़न होती है, जो 30 मिनट की अकड़न मैं बता रही हूँ, पेशेंट को किसी भी चीज़ से निजात नहीं मिलती है. वो बिल्कुल अपनी मुट्ठी बनाने में, पैर रख के चलने में उसको बहुत ही मुश्किल होती है, और जोड़ सूज जाते हैं, लाल हो जाते हैं, और वो जोड़ यूजली स्मॉल जॉइंट्स, हैंड्स के जॉइंट्स होते हैं. कभी कभी आपका ये जो TM जॉइंट होता है, जो कि खाने में आपको जबड़े का ये जोड़, इसमें भी सूजन आ जाती है. तो ये आर्थराइटिस अलग है, क्योंकि इसके अंदर हल्का बुखार, थकान और जोड़ों में जो दर्द मैं बता रही हूँ, देन अकड़न है, ये सारी चीजें इंफ्लेमेटरी आर्थराइटिस को ऑस्टियोआर्थराइटिस से या गाउट से अलग करती है।
अच्छा, कॉमन सिम्टम्स पर अगर गौर करें तो ये आपका जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये हाथों के जोड़ों को ज्यादा नजर आएगा, और जो नॉर्मल आर्थराइटिस है वो घुटनों के जोड़ों पर ज्यादा नजर आएगा, और गाउट नॉर्मली एंकल पर ज्यादा अफेक्ट करता है। ऐसा है,
फर्स्ट एमटीपी जॉइंट जो पहला जोड़ होता है आपका अंगूठे का और पैर का, जिसको हम पडोरा बोलते हैं, दैट इज द कॉमनेस्ट जॉइंट। एंड लेट मी टेल यू, गाउट जो है ना वो मेडिकल इमरजेंसी है, क्योंकि ऐसा दर्द इतना असहनीय दर्द होता है कि पेशेंट अपना कपड़ा भी उसके ऊपर बर्दाश्त नहीं कर पाता है। एंड इमरजेंसी में दीज पेशेंट्स हैव टू बी टेकन एंड गिवन स्टेरॉइड्स एंड अदर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एंड कोल्चिसिन, तब जाके उनको कुछ इसमें राहत मिलती है। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है।
ऑटोइम्यून डिजीज पर ये वापस आते हैं, इतनी लंबी आपने लिस्ट बताई हमें, बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि आपके ब्रेन तक को अफेक्ट कर सकती हैं, लंग्स को भी कर सकती हैं।
सेकेंड बीमारी जो योग्यता जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगी, दैट इज अ सिस्टमिक लूपस इरिथमेटोसिस, जिसको कि हम लूपस यानी कि वुल्फ कहते हैं। ये एक बहुत ही सिवियर काइंड ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज है, जिसमें कि आपका ऑटोइम्यून हमारा बिल्कुल फेलियर होता है। और ये बीमारी अगर हल्की होती है तो ये हमें, अगर इसका नाम ना वुल्फ बोलते हैं, लूपस भेड़िया, भेड़िया अगर शांत बैठा हो तो बिल्कुल डॉग की तरह लगता है, यू कैन प्ले विद, है ना ऐसा। तो जब ये हल्की होती है तो जैसे आपके गालों पे एक रैश बनाएगी, जिसको हम बटरफ्लाई रैश बोलते हैं, एंड देन मुँह में छाले बनेंगे, बाल बहुत झड़ेंगे, एलोप्लेशिया तक, कई लोगों को गंजापन तक भी आ जाता है। देन इसमें भी जोड़ों में दर्दें आती हैं, आर्थ्रेलजिया, इसमें जोड़ सूजते नहीं है लेकिन एक जनरलाइज्ड आपको आर्थ्रेलजियाज होते हैं, हर जगह पे जोड़ों में दर्द आती है। और ऐसे पेशेंट्स जब ये वुल्फ अगर बहुत ही विभत्स हो जाए तो ये सारी ऑर्गन सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। हमारे मेडिकल में सब ये बोलते हैं कि अगर एक बीमारी से सारी की सारी किताब पढ़नी है तो सिस्टमिक लूपस इरिथमेटोसिस, बिकॉज ये शरीर का कोई अंग नहीं छोड़ती जहाँ पे ये बीमारी अपनी मार ना मारती हो।
कारण क्या है इन बीमारियों के, क्यों होता है ये?
अब देखिए, ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है इसका ट्रिगर होता है, या तो वो ट्रिगर कोई इन्फेक्शन से हो जाए, जैसे आजकल वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलते हैं, जैसे चिकनगुनिया हुआ, देन आपका डेंगू हुआ, देन ईस्टर्न बार वायरस हुआ, रोटा वायरस हुआ, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कोविड भी वायरस था। इवन कोविड के बाद भी आई एम सीइंग कि बहुत ऑटो इम्यून डिजीजेज हमारी कम्युनिटी में देखने को मिल रही है, रूमेटॉइड फैक्टर्स, इवन डर्मेटोमायोसाइटिस के बहुत केसेस हम देख रहे हैं कोविड के बाद। दीज ऑटो इम्यून बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो देन द टॉक्सिन्स हो जाते हैं, कुछ ड्रग्स हो जाती हैं आपका, अगर कोई लोग लाइफस्टाइल में अगर स्मोकिंग, आजकल फीमेल्स भी बहुत स्मोकिंग दे आर टेकिंग अप बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल यू नो स्टेबिलिटी विच द वुमेन इज फेसिंग, दे डोंट रियलाइज कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है एंड स्पेशली द वुमेन इम्यून सिस्टम इज टोटली वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इंट्रिकेट एज कम्पेयर टू मेन, एंड बिकॉज ऑफ दीज ट्रिगर्स लाइक एल्कोहल इनटेक एंड स्मोकिंग, देन योर एक्सपोजर टू वेरियस रेडिएशंस, ये सब जो हैं आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करती हैं। देन द जेनेटिक मेकओवर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पोल्यूशन। अभी एक स्टडी की थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ने कि जो मेन रोड से जो 200 मीटर की दूरी पे जो लोग रह रहे हैं उनके, उन्होंने 500 लोगों के सैंपल्स को देखा, सो अबाउट 18% ऑफ द पीपल वर हैविंग ऑटो इम्यूनिटी इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव टेस्ट but they were not having any symptoms. So ANA was positive, rheumatoid factor was positive, and to in term NTCCP, which is a marker in the low titers, was found to be positive.
Means so they are pollution, more prone to
autoimmune disease. So these were all because they were just staying within the 200 meters of the main road, considering the traffic pollution and one of the factors in making these
pollution. Diseases. आपने कहा कि इम्यूनिटी ट्रिगर हो जाती है, ट्रिगर माने क्या, एक्टिव हो जाती है या क्या होता है?
लाइक जैसे रूमेटॉइड फैक्टर किसी का पॉजिटिव हो सकता है, अब बिकॉज ऑफ दीज इम्यून फैक्टर्स लाइक कि अगर मान लो ही इज स्टेइंग इन एन एनवायरमेंट वेयर देयर इज लॉट ऑफ पोल्यूशन और ही स्टार्ट स्मोकिंग और देयर आर सम डेंटल इन्फेक्शंस और ही हैज जस्ट मेट विद इन सम वायरल इन्फेक्शन सो ये सब जाके वो जो इम्यून सिस्टम जो जेनेटिक मेकअप था उसमें कहीं म्यूटेशन कोई काइमेरिज्म कुछ ऐसा कुछ करेगा इवन जैसे फीमेल्स में वंस दे अटेन दी चाइल्ड बेयरिंग एज तो जो हमारे हार्मोन्स होते हैं अगर आप जानो इन अ फीमेल अवर हार्मोन्स दे गो फॉर अ टॉस फॉर अबाउट 3 times हमारी जिंदगी में जब हमारी मेनार्की होती है ना उस समय हमारे बच्चों मतलब गर्ल्स में हार्मोन्स चेंजेस आते हैं एंड देन व्हेन देयर इज अ चाइल्ड बर्थ एंड देन अगेन देयर इज अगेन देयर इज लॉट ऑफ चेंजेस व्हेन वी आर अटेनिंग मेनोपॉज सो ये हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं इसमें जो एंडोक्राइन फैक्टर्स होते हैं दैट कैन ऑल्सो ट्रिगर दी इम्यून सिस्टम जिससे कि प्लाज्मा सेल्स कुछ एक्टिव होके अदर काइंड ऑफ ऑटो इम्यून सेल्स बनाने लग जाएं जिससे कि ये डिजीजेस एक्टिवेट हो जाए.
अच्छा अब मैं एक बड़े क्रिटिकल क्वेश्चन पे आ रही हूँ कि हम इन्हें कंट्रोल करने में फेल क्यों हो रहे हैं.
सी जस्ट लुक अराउंड मॉडर्नाइजेशन एंड that the pollution explosion, population explosion, and so many things, adulteration, to feed this kind of population, how much manure and chemicals we are using in our system, then to get rid of the various bugs, the pesticides are being used. In our houses, we are using so many chemicals from like mopping the floor, to the mosquito repellent, then the modernization, these waves we are using in the microwaves, then different gadgets what we are using, the mobile phone. Now we are in this era of internet. I think wherever we are sitting, we are surrounded by these invisible communicating waves. Which can really bring lot of triggers to our system. And that is why there is a surge of autoimmunity and different kind of viruses and different kind of infections, which are all trigger. They are all increasing around us. Then because of the changes in the environment and the radiations, you are understanding like our ecosystem is also now disturbed. The whole earth is going for a toss. The man-made viruses, then the other viruses which are coming. So everything is contributing.
डॉक्टर किरण सिंह आप एम्स से भी एसोसिएटेड रही हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस के फील्ड में रिसर्च और वैक्सीन्स का क्या
वेरी गुड क्वेश्चन तो सी द थिंग इज वंस वी स्टार्ट ट्रीटिंग दीज पेशेंट्स एंड इफ द पेशेंट इज अ स्टेबल वन हु कम्स इन द ओपीडी वी नाउ नो दैट वी आर गोइंग टू ब्रिंग डाउन हिज इम्यूनिटी सो दैट द इम्यूनिटी विच इज हार्मिंग द पेशेंट can be kept at bay and then the treatment can be done. And sometimes, theek se chalte chalte patient goes into remission, means jo uske memory cells hote hain, wo pura bhool jate hain ki ye bimari jo trigger hai, wo hata diya. So sometimes we get remissions also. Like say after 2 years of the treatment, we step down the medication and then keep seeing. And if the patient is responding well, then slowly, slowly, sometimes we are able to withdraw the treatment of the patient. So, a lot of research is being done and vaccinations, they help us because we are going to bring down the immunity. So, jo immunity ka function hai, to protect us from the infections. So, like, there are 3-4 vaccines which we really give to our patients and we tell them, like, influenza vaccine, which has to be taken yearly by people who are above, say, 50 years of age, or who are undergoing any treatment where the steroids or any these kind people on recurrent dialysis where they're more prone to infections, any diabetic person because their immunity is also at bay and even the alcoholics, hai na? Ye sare jitne bhi log hote hain jinki immunity disturbed hai ya with age niche aa gayi, unko hum vaccinations zarur dete hain aur bachchon mein kyunki immune system itna develop nahi hota hai, you know that we give them कितनी सारी वैक्सीन्स के टीके आपको भी लगे होंगे सो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देन वी गिव प्रेविनार 13 फॉर द निमोनिया देन न्यूमोकॉकल 23 विच इज गिवन आफ्टर 2 months देन एवरी 5 years एंड देन now, like Amitabh Bachchan is also giving lot. That is the Shingrix vaccine, which is for the herpes zoster, which above 50 everybody has to take. And in our patients where we are treating them, we encourage them to take Shingrix vaccine, because herpes per se is also a very disturbing disease. Agar wo brain ki herpes ho jaye ya genital organs ki herpes ho jaye ya eyes mein aa jaye or any other where like we have more apart from the arms and legs, it's very painful and the pain remains for 6 months, 8 months, like a burning pain jaise aapke nerves mein se aag nikal rahi ho. So vaccines is a good thing and we must take from this munch. Main ye logon se appeal karungi ki wo apne doctors se mile aur above 50 wo Shingrix vaccine bhi le aur Prevena 13 and influenza vaccine. Like aajkal agar aap dekhoge hospitals mein kaun se patients hain, lot of patients with swine flu and flu which is there, and people are having these covid like symptoms like nose blockade and cough and cold and fever, and many of the elderly patients, they are reaching ICUs and battling their life. So a single shot of influenza vaccine every year can give them more life.
Dr. Seth, autoimmune disease ki ek aur chunauti ye hoti hai ki bahut kam samay deti hai ye patient ko. To wo kaun se symptoms hain jinko leke aapko turant active ho jana chahiye aur kis doctor se milna chahiye?
Aapke sharir mein agar koi bhi symptom hai jo ki within a week nahi theek ho raha hai, chahe wo koi rash ho, चाहे वो जोड़ों का दर्द हो, चाहे वो कोई वीकनेस हो, जैसे आप नॉर्मल में आप ऊपर से सामान उठा लेती हैं या कंघा कर लेती हैं, बट अगर आपको कंघा करने में दिक्कत आ रही है, अपने आर्म्स को उठाने में दिक्कत आ रही है, या आप नॉर्मली नीचे आलती पालती मार के बैठ जाती हैं लेकिन आपको उठने में दिक्कत आ रही है, दीज आर द सिम्टम्स. कोई रैश निकल रहा है, कोई वीकनेस आ रही है, कोई अनड्यू फटीग हो रहा है. सो दीज आर द सिम्टम्स वेयर यू शुड नॉट ignore them. If they are persistent for about a week, you must, jahan ka bhi symptom aaya us doctor ke paas pahunchiye. Agar aapko skin mein aa raha hai to go to a dermatologist. And I think ki we are doing our bit in the interspeciality that hum log aapas mein bahut log baat karte hain, so that jab dermatologist ke paas is tarah ke patients aate hain to they are aware ki maybe this can be the diagnosis, and they also send some test and they refer the patient to the allied speciality. तो कोई भी सिम्टम जो आपके, मतलब जैसे जोड़ों में दर्द, मैंने देखा है कई लोगों को एंकल में दर्द आ रहा है, रिस्ट में दर्द आ रहा है, वो persistent है, वो तेल लगाए जा रहे हैं, क्रोसिन की गोली खाए जा रहे हैं, ओवर द काउंटर जाके दवाइयां लिए जा रहे हैं लेकिन डॉक्टर के पास नहीं पहुंच रहे हैं, एंड देन दे कम विद डिफॉर्मिटीज. जब उनको फाइनली पता लगता है कि ओके ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस. So, मुझे लगता है कोई भी सिम्टम जो 1 week 10 days में अपने आप से नहीं रिमिट कर रहा है, जिसके लिए बार बार दवाई खानी पड़ रही है, जिसके लिए बार बार तेल मालिश करनी पड़ रही है, या जिसके लिए डिसफिगरिंग हो रहा है, कोई रैश आ रहा है जो गाल पे, धूप में जाने से कोई लाली आ रही है, मुंह में छाले बन रहे हैं, बहुत फटीग है, थकान है, प्लीज अपने डॉक्टर से कंसर्न करिए.
वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन. अब हम आते हैं अंतिम पड़ाव पर. अगर ऑटो इम्यून डिजीज आपको हो गई है, जैसे मान लीजिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही है, या ऐसी बीमारियां जो काफी लंबी चलती हैं, तो इनमें आपको पेशेंट की देखभाल कैसे करनी है ताकि उसकी लाइफ क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो सके?
योगिता, मैं जब भी पेशेंट्स को देखती हूँ तो मैं गोला बनाती हूँ, एंड आई टेल द पेशेंट दैट माई वर्क इज दिस स्मॉल ट्राइंगल, एंड द अदर thing you have to do to complete the circle means the first requirement is jo maine aapko dawaiyan di hain wo aap khaoge, time se khaoge, aur agar inko lene mein aapko dikkat lagti hai, so you come back to me again sooner or later so that to clear your doubts, and if it is not suiting you then we can change the medication, but you should not stop the medication on your own. Second, jo triangle mein usme se kaat ke bolti hu ki ye aapka hai, like what are you eating, like the purani kahawat hai na, aap kya khate ho wo aap ban jate ho. So agar aapka unhealthy lifestyle hai jisme aap zyada junk food kha rahe ho, sabse zyada main auraton ko dekhti hu ki wo unka time nahi hota, they try to finish the work and they do the breakfast by 1 pm, 1 PM ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं होता है. देन दे विल हैव लंच एट 4 एंड देयर डिनर विल बी 10. वी हैव टू रिस्पेक्ट अवर बायोलॉजिकल क्लॉक, बिकॉज अगर बायोलॉजिकल क्लॉक को आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपका डाइजेशन खराब होगा. डाइजेशन खराब होगा तो आपकी इम्यूनिटी भी बैडली अफेक्ट होगी. सो देन वी टेल देम कि व्हाट यू हैव टू ईट, हाउ यू हैव टू ईट, एट व्हाट टाइम यू शुड. देन अनदर ट्राइंगल आई कट ओवर फ्रॉम दैट इज दैट अ रेगुलर एक्सरसाइज इज वेरी मस्ट. उसमें से आप 2 दिन वॉक कर लीजिए, 2 दिन स्ट्रेचिंग कर लीजिए, 2 दिन डांसिंग कर लीजिए, 1 दिन ऑफ कर लीजिए, 1 दिन हैव फन विद द किड्स. देन अनदर ट्राइंगल विच आई कट इज देयर साइकोलॉजिकल नीड्स, बिकॉज इफ देयर एटीट्यूड इज गुड, इफ देयर साइकोलॉजिकल नीड्स इज मेट, सो दे हैव टू हैव फ्रेंड्स. दे शुड बी टॉकिंग टू देयर फ्रेंड्स, पीपल लाइक माइंडेड पीपल हु कैन लिसन टू देम, है ना. दे शुड कट आउट द नेगेटिविटी फ्रॉम देमसेल्फ. सपोज बिकॉज आई हैव सीन लाइक द यंग गर्ल्स, दे गेट मैरिड, दे हैव अ स्मॉल चाइल्ड, दे हैव रूमेटॉइड आर्थराइटिस. The mother-in-law is giving a lot of stress because she is not understanding the disease. She wants her to work and get up early in the morning, but her, you know, stiffness is not making her work that way. And despite telling the whole family and doing the counseling, still there are a lot of differences. But then she has to create her own, you know, support system. So she has to be talking to the friends. She has to create some, you know, some me time where she is doing some hobby or maybe just playing one game of Ludo with the husband, so that, you know, something is, some happiness is created. So that is really very important, like how you create your support system. Then I also tell them the time management, ki sara kaam ek saath nahi karna hai. You take time off, make a priority list, what is most important for you, do that first, and then other things little later. And you can have little bit 10 minutes, 15 minutes of just sitting and, you know, relaxing. That's listening one music. That is really very important. So we give them tips ki apne liye bhi time nikalna hai aur apne aap ko relax rakhna hai. Then I really talk to them one triangle about her, their sleep. That sleep is really very important. And 8 hours of rejuvenating sleep is really very this thing. I tell them to take their night dose of anti-inflammatory drugs so that morning may they get pain-free and stiffness-free, so that they can catch the day in a very positive manner. I tell each patient of my rheumatoid and other immune diseases that please, in today's world, everybody has a mobile phone. Please talk about your experiences on the net so that people can watch you. And because when they, you become the brand ambassador for other people. You tell about your symptoms because doctor might not get the time to talk so much in their busy OPDs. But every patient can be, throw light and can be a torch bearer to the other patient. So by talking about the experiences, then I'd encourage them to join, you know, groups like Rheumatoid Foundation, and there is systemic lupus erythematosus, Sjogren's disease, many psoriasis. They have ankylosing spondylitis. They have groups which are available online. They can join these groups. They can make their videos and, you know, send on the internet so that people can watch them. And sometimes other person is scared. Okay, doctor has given me this medication. Well, mera koi kidney kharab na ho jaye, lung na ho jaye. But when they talk ki main itne din se dawai kha rahi hun and I'm perfectly all right, my doctor is getting the test every 3 months and seeing my kidneys, liver and everything, they are doing fine. So ye sab cheeze unko bahut logon ke andar jagrukta phailane mein madad karta hai. And jab ek patient dusre patient ko batata hai, things are better and they also reach the right doctor. So main ye gola banati hu.
थैंक यू सो मच डॉक्टर किरण सेठ, आपने ऑटो इम्यून डिजीज पर आज बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सारी जानकारी हमें दी. आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
थैंक यू योगिता फॉर गिविंग मी प्रोवाइडिंग दिस मंच.
ये था हमारा आज का एपिसोड. इसे प्रोड्यूस किया था श्रुति पाल ने और एडिट किया था संजू अब्राहम ने. आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं. आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं yogita.yadav@hindustantimes.com पर. हेल्दी जिंदगी सीजन 2 पॉडकास्ट को शेयर करें अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ, क्योंकि पहला धन निरोगी काया, हेल्थ इज वेल्थ।
इस पॉडकास्ट पर अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो करें @HDSmartcast। हम सारे मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं, और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.hdsmartcast.com।